الحمد لله وكفى وسلام عليه الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، معرف القرآن جلد نمبر 5 سے، اور آج کل جو آیات چل رہی ہیں جن کے معارف و مسائل پڑھ رہے ہیں وہ آیات نمبر 70 سے لے کر کے 76 تک ہیں، 76، اور پیج نمبر ہم 117 کے اوپر اس وقت ہیں. آخری بات جو پچھلے ہفتے کی کلاس کے اندر پڑھی تھی وہ یہ واقعہ چل رہا تھا نا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنا جو غلہ تھا وہ لے کر کے واپس اپنے گھر جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے ایک حیلہ کیا تھا، اور اس حیلے کے کا مقصد کیا تھا کہ بنیامین کو جو ہے وہ پیچھے روک لیا جائے، ان کا جو حقیقی یعنی باپ شریک ماں شریک بھائی تھا یوسف علیہ السلام کا بنیامین، تو ان کو پیچھے روکنے کے لیے یہ حیلہ کیا تھا. تو اس کے ضمن میں پھر یہ ساری باتیں مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے کری تھیں کہ یہ جو حیلہ کیا تھا تو اس کے اندر تو بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو کہ شرعاً جائز نہیں ہیں یا اخلاقاً جائز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ اپنے باپ کی جو ہے وہ دل آزاری کا سبب بن رہے ہیں اور بھائیوں کی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ بھائیوں نے جو ہے نا وہ اس موقع کے اوپر چوری نہیں کی تھی، تو ان کی رسوائی بنیامین کی رسوائی ہو رہی ہے وغیرہ، اس طرح کی چیزیں، تو یہ کیسے جائز ہو گئیں؟ تو اس میں فرمایا تھا کہ یہ ساری جو سارے کام تھے نا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہے تھے، اور اس کی مثال جو ہے وہ ایسے ہی تھی جیسے کہ خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑنے والا کام کیا تھا بغیر کسی وجہ کے، کوئی جائز وجہ نہیں تھی کہ وہ ان غریبوں کی کشتی کو توڑ دیتے، اس کے اندر یعنی نقص پیدا کر دیتے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک نابالغ لڑکے کو قتل کر دیا، تو نابالغ لڑکے نے تو کوئی یعنی قتل ناحق نہیں، یعنی یہ تو قتل ناحق ہوا نا، جس کی قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ حکم آیا ہے کہ بھائی ولا تقتلوا کسی، یعنی تم جو ہے وہ کسی کو ولا تقتلوا کیا ہے اولاد، نہیں وہ تو اولادکم اولادکم وہی آیت ہے، تو بغیر حق کے جو ہے وہ کسی کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیسے تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، تو خضر علیہ السلام نے کیسے جو ہے وہ قتل کر دیا ایک بچے کو، ٹھیک ہے. تو اس کی یہی ایکسپلینیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ جو چاہیں کروائیں، ٹھیک ہے. تو اب خضر علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی ہی تھے، ٹھیک ہے نا. یہ اور بات ہے کہ ان کی نبوت جو ہے وہ نبوت تو خیر تھی ہی ان کی، یا اس کے اوپر بلکہ علماء میں اختلاف بھی ہے کہ وہ نبی تھے یا جو ہے وہ خالی ولی تھے، لیکن ان کی جو ایک خاص قسم کی ایک پوزیشن تھی وہ کیا کہتے ہیں ان کو، جو کیا کیا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ابرار سے ملتا جلتا، ابدال، ٹھیک ہے، ابدال والی پوزیشن تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی حکم کے اوپر مأمور ہوتے ہیں، اور وہ اپنا ان کا ایک الگ ہی نظام چل رہا ہوتا ہے تکوینی امور کے اوپر، جزاکم اللہ، ٹھیک ہے. تو وہ ابدال وغیرہ کا ایک پورا ایک بڑی تفصیل ہے اس کے اندر. تو اب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ تو ابدالوں کا بھی سردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، قطب الارشاد ابدالوں کا بھی سردار ہوتا ہے، اور نبی اگر نہیں قطب الارشاد ہوگا تو پھر اور کون قطب الارشاد ہوگا. بہرحال تو یہ ساری بات ہم نے کری تھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ از دا لا، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے ایسا کام کیوں کیا، اور آپ نے جو ہے وہ شریعت کو فالو کیوں نہیں کیا، اور آپ نے فلانے کو فالو کیوں نہیں کیا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. تو یہ بات جو ہے وہ ہم نے آپ کو سمجھائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور بھی اسی زمن کے اندر ایک بہت اہم بات جو ہے وہ سامنے کیا رکھی تھی इस किस्म के जो मामलात पेश आते हैं ना, ठीक है, ये कहलाते हैं गैबी उमूर। ठीक है कि इनके पीछे जो है ना वो अल्लाह ताला का हाथ होता है, लेकिन वो इंसानों को नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है ना। तो ये गैबी उमूर होते हैं। ये जो गैबी उमूर होते हैं ना, ये हमारी अकल से अगर हम इनको समझने की कोशिश करेंगे ना, तो हमारी अकल में ये बातें नहीं आ सकती हैं, ठीक है ना। खालिसतन अकल में बातें नहीं आ सकती हैं, सिर्फ अपनी अकल से इस बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो यानी ये डाउट जो है ना वो रिमूव नहीं हो सकेंगे। अब इसका एक तरीका तो ये है कि भाई आप जो है ना वो इनके ऊपर खूब सारे जो है वो दलाइल देते रहें, ठीक है ना, अकली दलाइल दें और जो है वो नकली दलाइल दें, यानी कुरान और हदीस के रेफरेंसेस दे दे करके आप इनको दलाइल, आप उस बंदे को दलाइल दें जिसके जहन के अंदर जो है ये शकूक व शुबहात आए हैं या डाउट्स आए हैं, तो उन दलाइल के जरिए से उन डाउट्स को जो है वो आप रिमूव करने की कोशिश करें, ठीक है ना। खुसूसन उन मामलात में जो कि तकदीर से मुताल्लिक है, तकदीर से मुताल्लिक जो मामलात होते हैं ना, वो तो अकल में समझाने बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते हैं, और वो एज दे गेट मोर कॉम्प्लेक्स उतना ही जो है ना वो दलाइल उसके लिए अनअवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, दलाइल अनअवेलेबल होते हैं। तो दीन हमारा जो है ना वो इसका क्या हल पेश करता है, दीन हमारा क्या हल पेश करता है कि भाई इंसानी अकल के अंदर जो ये तकवीनी उमूर के ऊपर या गैबी उमूर के ऊपर जो शकूक व शुभात पैदा होते हैं, ठीक है ना, और ये जो भी सोचेगा इन बातों के ऊपर उसकी अकल में शकूक व शुभात पैदा होंगे, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि नहीं पैदा होंगे, होंगे डेफिनेटली होंगे। जो इन बारे में सोचेगा ही नहीं तो उसके जहन में नहीं पैदा होंगे, तो जो इन बारे में नहीं सोचेगा वो फिर किस किस्म का इंसान होता है जो इन चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं, जरा आप बता दें जल्दी से। अगर जो इन चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं वो फिर किस किस्म के इंसान होते हैं, या वो क्या कर रहे होते हैं जो इन चीजों के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो बताएं कैसे लोग होते हैं जो कि इन चीजों के बारे में नहीं सोचते। जी, बिजी पीपल। तो क्या जो दीन वाले होते हैं वो क्या फारिग लोग होते हैं? व्हाट डू यू मीन बिजी पीपल? बिजी इन व्हाट? मानने वाले? नहीं, बिल्कुल नहीं, बेहिस, बेहिस लोग। ये अच्छा जवाब दिया आपने। बेहिस किस तरह बन जाते हैं वो लोग जो किन चीजों के बारे में नहीं सोच रहे होते, ठीक है, कैसे बन जाते हैं, यही तो पूछ रहे हैं आपसे, जो इन चीजों के बारे में नहीं सोच रहे होते। देखें, एक तो होते हैं मेंटली रिटार्डेड, ठीक है ना, जिनकी दिमागी सलाहियत जो होती है ना वो मफलूज होती है, ठीक है ना, जिनके फिजिकल प्रॉब्लम होती है जिनके साथ, सही है, अल्लाह ताला ने उनको दिमागी तौर पर मफलूज पैदा किया होता है, वो इन चीजों के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, ठीक है ना। और दूसरे कौन लोग होते हैं जो कि इन चीजों के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं? खुद गर्ज? नहीं, अब सवाल मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, आपका भी कसूर नहीं होगा इसमें यकीनन। दूसरे लोग जो इन चीजों के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं वो कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो कि शहवात के अंदर पड़े हुए होते हैं, शहवात के अंदर, ठीक है ना, यानी किसी लड़की के पीछे पड़े हुए हैं, या लड़की है तो वो लड़के के पीछे पड़ी हुई है, या जो है वो मौसीकी जिसके बाद जाकर के लड़की लड़के के पीछे पड़ेंगे, यानी मौसीकी जो है वो लड़की लड़के के पीछे पड़ाने का एक वो होता है, क्या कहते हैं, स्टेयर केस होता है, स्टेयरवे होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर जब आप पढ़ते हैं तो फिर आगे जा करके जिना के जज्बात जो है वो दिल के अंदर पैदा होते हैं, जैसे नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने फरमाया, ठीक है ना। तो जो म्यूजिक एंड डांसिंग एंड शराब एंड कबाब और जिना और इस किस्म के जो ख्यालात में जो पड़े हुए होते हैं ना, वो फिर अल्लाह की वजूद के बारे में उनके जहन में सवाल नहीं आते, ठीक है ना, उनके बारे में जो है वो तकदीर के बारे में उनके जहन के अंदर सवाल नहीं आते, बिकॉज दे आर बिजी, जैसे आपने शुरू में बताया था, बिजी पीपल। बिजी इन व्हाट? बिजी इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो कि इन चीजों के बारे में, इन चीजों में बिजी होते हैं, या मेंटली जो है ना वो मफलूज होते हैं, तो वो नहीं सोच सकते किसी चीज के बारे में। लेकिन जो इन चीजों के बारे में सोचता है, ठीक है ना, जो कि कायनात के ऊपर गौर करता है, ये चीज कैसी हो गई, जो कि कायनात के अंदर जो हैपनिंग्स होती हैं उनके ऊपर गौर कर रहा होता है कि ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ठीक ठीक है ना, तो वो फिर उसके जहन में ये सवालात लाजमन आते हैं, लाजमन आते हैं, ठीक है ना। अब इसका हल, हमारा दीन इसका हल क्या प्रोवाइड करता है, हमारा दीन इसका हल क्या प्रोवाइड करता है कि ये जो गैबी उमूर हैं या तकदीर से रिलेटेड उमूर हैं, आप सबके ऊपर, सबको जो है ना वो दलाइल के जरिए से क्लेरिफाई करते रहें, अकली दलाइल दे दे करके, नकली दलाइल दे दे करके आप जो है वो इनको क्लेरिफाई करते रहें। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल काम है कि दलाइल के जरिए से इनको जो है ना वो आप रिमूव कर सकें। और ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है कि हाँ जी, यानी फलानी किताब में जाकर के जो है वो सारे ऐसे दलाइल जो है वो लिखे हुए होंगे कि जो एक ऐसा लेमैन किस्म का इंसान जिसके जहन के अंदर ये सारे के सारे शकूक व शुबात पैदा हुए हैं, वो लेमैन आदमी जो है ना वो उस किताब को पढ़ करके उसके सारे दलाइल का जवाब मिल जाएगा उसको और वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा दीन जो है वो इसका क्या हल पेश करता है, वो हल क्या है, वो बहुत सादा सा हल है और आप में से अक्सर को जो है वो ऑलरेडी मालूम है। हमारा दीन जो है ना इसका हल ये पेश करता है कि जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, उनके साथ जुड़ जाओ, उनके साथ जुड़ करके रहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ मानने वालों, ठीक है ना, कूनू इत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, सादिकीन के साथ जुड़ जाओ, उनके साथ नत्थी हो जाओ, उनके साथ ही उठना बैठना तुम अपना रखो, उन्हीं की बातें सुना करो, उन्हीं को जो है ना वो देखा करो, ठीक है ना, और उन्हीं से जो है वो सीखा करो और उन्हीं के साथ वक्त गुजारा करो, कूनू मअ सादिकीन, ठीक है ना। जब तुम उनके साथ हो जाओगे ना तो जो अल्लाह की मोहब्बत है ना वो तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी, और जब मोहब्बत तुम्हारे अंदर आ जाएगी ना तो फिर उसके बाद ये ह्यूमन नेचर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई है कि जब तुम किसी चीज की मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हो ना तो फिर तुम उसके बारे में अंधे और बहरे हो जाते हो। हुब्बु का शई युमी व युसिम, ये नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया, किसी भी शय की जो मोहब्बत होती है ना वो उसके बारे में तुम्हें युमी व युसिम बना देती है। देखने जैसे आप किसी का कोई सियासी लीडर होता है, किसी का कोई फलाना जो है वो बना हुआ होता है पेशवा, है ना, जिस किस्म का भी हो, म्यूजिक में हो या क्रिकेट के अंदर हो या सियासत के अंदर हो या किसी भी चीज के अंदर हो, उसको उसकी बुराइयां नजर नहीं आती। फिर लाख आप उसके बारे में बुराइयां बताते रहे, वो जो है ना वो कहेगा नहीं जी, मुझे तो इसी से मोहब्बत है ना, मैं तुम्हारी बात ही नहीं सुनूंगा। तो भाई दुनिया के ढलने और मरने वालों के लिए मोहब्बत करके उनकी बुराइयों से अपने आप को अंधा बनाने से क्या बेहतर नहीं है कि जो ना ढलने वाला है ना मरने वाला है, जो हमेशा हमेशा से और हमेशा हमेशा रहेगा, जो कि हमारी सारी की सारी नेमतें हमें देने वाला है परवरदिगार हमारा, हमारा रब, हम उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाएं तो उसकी तो ये चीजें जो हमें समझ में नहीं आती है ना, उसके काम जो हमें समझ में नहीं आते, जो कि एक तरह से हमारी नजर में जो है वो नुक्स बन जाते हैं कि ये क्यों किया ऐसे, हम उसके बारे में अंधे और बहरे बन जाएं, ठीक है ना, क्योंकि हमें हमें तो उससे मोहब्बत से गर्ज है, हमें तो उसकी जात से गर्ज है, उसकी मोहब्बत से गर्ज है, हमें क्या कि भाई ये एक एक चीज हमें समझ में आ जाए उसके बारे में, ठीक है। तो हमारा दीन जो है ना ये सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता कि गैब के बारे में हर सवाल का जवाब जो है ना वो आप दे करके फलाने भाई साहब को या बहन साहब को जो है ना वो सेटिस्फाई कर लें, ठीक है ना, क्योंकि गैब के बारे में आप सवाल के जवाब नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर आजकल खवातीन के अंदर यही बहस चल रही थी सूरह बनी इसराइल की तफसीर के अंदर, ठीक है, कि जो फरमाया ना वला तक्फु मा लैसा लका बिही इल्म, ठीक है ना, कि तुम जो है ना वो उस चीज के पीछे मत पड़ो कि जिसका तुम्हारे पास इल्म नहीं है। उसकी तफसीर में मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने इसी इसी वॉल्यूम 5 के अंदर पेज नंबर 482 के ऊपर अगर आप खोल के देखें, अगर आपके पास किताब है उसी में खोल करके देख लें, हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने बड़ी जबरदस्त बात लिखी है वहां पर, ठीक है ना, उसी की तफसीर जो है वो पिछले दिनों से चल भी रही है और उसके ऊपर हमने जो है ना वो एक छोटा सा फ्लायर, पिंक कलर का फ्लायर, अगर ग्रुप के ऊपर ऊपर स्क्रॉल अप करें तो पिंक फ्लायर भी आपके साथ शेयर किया था, ठीक है, कि खबर से पहले जराए खबर की तहकीक जरूरी है। तो खबर की तहकीक तो हम कर भी नहीं सकते, ठीक है, जैसे कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, क्या आप तहकीक कर सकते हैं कि वाकई अल्लाह है अर्श के ऊपर कि नहीं है अर्श के ऊपर, कैसे करोगे तहकीक ला करके, अर्श के ऊपर जाना पड़ेगा भाई, नहीं जा सकते। जन्नत है कि नहीं है, कैसे तहकीक करोगे कि जन्नत है कि नहीं है, सातवें आसमान के ऊपर जाना पड़ेगा। मौत के बाद जिंदगी है कि नहीं है, कैसे तहकीक करोगे कि मौत के बाद जिंदगी है कि नहीं है, मरना पड़ेगा उसके लिए, उसके पहले तहकीक नहीं हो सकती, ठीक है ना। उसी तरह ये तो छोटी बात आपने लिखी ना कि सीरत गजवाए बदर से पहले काफले को लूटने वाली बात, हम तो जन्नत जहन्नुम और मरने के बाद वाली जो जिंदगी है उसके बारे में तहकीक की बात करें, कर सकते हैं इसके बारे में तहकीक? राइट, कर ही नहीं सकते। तो हमारा दीन जो है ना वो क्या सिखाता है कि गैब की चीजों के बारे में तहकीक में पढ़ने की बजाय तुम इस तहकीक में पढ़ो, इस तहकीक में पढ़ो कि वो जो गैब की खबरें जिसने तुम्हें पहुंचाई हैं वो कैसा है, जिन चीजों को तुमने नहीं देखा, जिन चीजों को तुमने नहीं सुना, जिन चीजों को तुमने नहीं सूंघा, राइट, जो तुम्हारे लिए गैब है, चाहे वो दुनिया से, दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करने वाला गैब हो या दुनिया से बाहर वाला गैब हो, आसमानों वाला गैब हो या जो है वो अर्श वाला गैब हो, या दुनिया के अंदर ही गज़वाए बदर के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हमारे लिए गैब है, राइट, उसकी तहकीक में पढ़ने के बजाय जो तुम्हारे पास खबर लेकर के आया है उसकी तहकीक करो। इसी को हमारे दीन के अंदर इस्नाद कहा जाता है, सनद कहा जाता है, चेन ऑफ नरेशंस कहा जाता है। आज सुबह ख्वातीन को भी यही बात समझाई है कि हदीस मुबारका का जो पूरा का पूरा जखीरा है तो उसके अंदर बहुत सारी हदीसें तो ऐसी हैं जो कि ह्यूमन वर्च्यूज से रिलेटेड हैं, वो हम पहले से ही उनको सही समझते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम की बात सुन करके और ज्यादा जो है वो हमें बात जो है वो अच्छी लगती है। हाँ भाई, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने भी यही बातें बताई हैं जो कि सारी दुनिया जो जिनको अच्छा समझती है, लेकिन हदीस मुबारक के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं बुखारी शरीफ के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर, जो कि अकल को समझ में नहीं आती, जो कि हमारे स्टैंडर्ड्स पे पूरी नहीं उतरती, ठीक है ना? तो हम जो है वो उसकी तहकीक करेंगे कि क्या वाकई नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा फरमाया था कि नहीं फरमाया था, ठीक है ना? तो इसका क्या तरीका है, जाकर के रोजा रसूल के ऊपर जाके आवाज लगाएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा हमें जवाब दीजिए, आपने ऐसा फरमाया था कि नहीं फरमाया था? कोई लगा सकता है वहां पे जाके जवाब, वो आवाज लगा सकता है, और आवाज लगा भी दिया तो क्या जवाब आएगा रोजा रसूल से? हदीस की तहकीक करने का ये तरीका है? नहीं, अस्मा और रजाल, जो रिजाल थे जिनके वास्ते से वो खबर पहुंची है, अगर वो ठीक हैं तो वो हदीस सही है, मेरी अकल में आए कि ना आए, मेरे सही गलत के स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरी उतरे या ना उतरे, ठीक है ना? मैं उस हदीस को वेरीफाई नहीं कर सकता, ना तो मैं टाइम ट्रैवल करके वापस जा सकता हूँ, ना मैं रोजे रसूल के ऊपर जाकर के जो है वो आवाज लगा करके उसकी तहकीक कर सकता हूँ। मुझे जो है वो चेन ऑफ नरेशन, सनद की तहकीक करनी होगी, सनद सही है कि नहीं है, और वो भी मैं कैसे करूंगा, मेरे पास तो इल्म भी नहीं है, जो मुहद्दिसीन ने तहकीक कर दी है उस तहकीक के ऊपर एतमाद करना होगा, ठीक है? तो जो हमारा दीन इसका हल प्रोवाइड करते हैं ना, वो ये नहीं है कि जो छुपी हुई चीजें हैं, गैब वाली चीजें हैं या तकदीर से मुताल्लिक चीजें हैं उनकी तुम जाकर के तहकीक करो, नहीं, बल्कि लोगों के साथ तुम जुड़ करके रहो, उनकी तहकीक करो और तहकीक करके जुड़ो। अभी खवातीन में एक सिलसिला और शुरू होने वाला है, आप में को भी इंशाल्लाह उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर करेंगे, पीरे कामिल, राइट, पीरे कामिल के साथ, शेख कामिल के साथ जो है वो इस्लाही ताल्लुक बनाना। तो ऐसे ही किसी शेख कामिल के साथ इस्लाही ताल्लुक ना बना लेना जिसके बारे में जो है वो तुमने कोई पोस्टर देख लिया हो, जिसके बारे में टीवी के अंदर जो है वो कोई प्रोग्राम तुमने देख लिया हो कि हाँ भाई ये बड़े अच्छे शेख हैं, इनके बारे में, इनके साथ जो है ना वो बैत कर लेनी चाहिए। नहीं, तहकीक करो, फिर उसके बाद जो है वो ताल्लुक बनाना, फिर बैत का ताल्लुक बनाना या इस्लाही ताल्लुक बनाना, ठीक है ना? तहकीक के बगैर मत बना लेना। तो बंदों के बारे में तहकीक करो, ठीक है? तो गैब के बताने वालों के बारे में, गैब बताने वालों के बारे में तहकीक, ये जो है ना, तहकीक से मुराद ये कि भाई उनके साथ जुड़ोगे, उनके साथ उठो बैठोगे, उनकी सोबत इख्तियार करोगे, तब पता चलेगा ना कि वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, जैसा वो क्लेम करते हैं वैसे हैं कि क्लेम के बिल्कुल ही खिलाफ हैं, ठीक है ना? तो तहकीक करने का ये मतलब तो होता है सोबत में बैठो, नत्थी हो जाओ उनके साथ, और फिर उसके बाद जब पता चल जाए कि नहीं भाई ये ठीक लोग नहीं, तो छोड़ दो फिर उनको, ठीक है ना? अब इतना टाइम अगर है कि हर एक के पास जाके बैठोगे तो फिर हर एक के पास जाकर के बैठो, और अगर टाइम तुम्हारे पास कम है तो फिर जो अपने ऑलरेडी जो तहकीक किए हुए लोग हैं, तुम्हारे जानने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, उनकी जिंदगी जो है वो एक तकवा तहारत के ऊपर गुजर रही है, गुजरने की कोशिश, उन्होंने ऑलरेडी तहकीक करी हुई है तो उनसे पूछो उनके बारे में, ठीक है ना? तो बहरहाल, तो ये चीज जो है ना ये दुश्मन को पता है, हमारा दीन जो है ना वो दरअसल हमें किस चीज की तहकीक करने को कहता है, उसको पता है कि ये जो गैब का, ये जो दीन है, ये जो ईमान है, ये तो गैब की खबरों के ऊपर तस्दीक करने का नाम है, ठीक है ना, और उसको पता है कि गैब की खबरों की तस्दीक वगैरह तो ये लोग वैसे भी नहीं कर सकते, तो वो कोशिश तो करता है कि गैब की खबरों को जो है ना वो बड़ा ही अचंभा बना करके पेश करे और मुसलमानों को जो है ना वो खराब करने की कोशिश करे। लेकिन मुसलमान जो है ना वो अक्सर औकात जो है वो गैब की खबरों के ऊपर वैसे ही ईमान ले आते हैं, क्योंकि उनका एतमाद है नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर और अपने उलमाए कराम के ऊपर, तो उलमाए कराम ने जो बात बताई है तो वो उसके ऊपर एतमाद कर लेते हैं, ठीक है ना, बेशक जो है वो उनकी अकल में आ रही हो या ना आ रही हो। तो फिर उन्होंने इसका क्या हल निकाला कि इनको जो है ना वो उलमाए कराम के बारे में बतजन कर दो। जब उलमाए कराम यानी जो जिस चेन से इनके पास खबर पहुंची है, जब इस चेन के बारे में ये लोग मुश्तबा हो जाएंगे ना, मुश्तबे हो जाएंगे यानी डाउटफुल हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है ना फिर सारी चीजों के बारे में डाउटफुल हो जाएंगे, जो कुछ उलमा इनको बताते हैं हर चीज के बारे में डाउटफुल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी के लिए जो है वो सारी की सारी मेहनतें करते रहते हैं और आज भी इसी किस्म की मेहनतें कर रहे हैं, राइट। आकर के जो है वो उल्टी सीधी कहीं पे वो धरना डाल देते हैं और धरना डाल करके बोलते हैं कि मौलवी लोग क्यों नहीं धरना डाल रहे हैं। वो मौलवी ने जितने धरने डाले तुमने तो उतने कभी सोचा भी नहीं होगा इतने धरने डालने के, लेकिन हर बात में ना मौलवी क्यों नहीं करते, मौलवी ये क्यों नहीं करते, उलमा को ये काम करना चाहिए था, और उलमा को जो है वो हर मस्जिद में करना चाहिए था, फलाना करना चाहिए था, है ना, और जो है वो सिस्टम को चैलेंज करना चाहिए था। भाई चैलेंज करके तुमने क्या कर लिया, जो कि वो कर लेते तो कुछ हो जाता, ठीक है ना। लेकिन हर चीज में ना घुमा फिरा करके ऊट पटांग तरीके से बस जो है ना वो मौलवी को घसीटना है और उसको जो है वो बुरा बना करके नौजवानों के सामने पेश करना है, अवाम उन्नास के सामने पेश करना है, ठीक है ना। करना खुद भी कुछ नहीं है, खुद भी कुछ नहीं करना, बस बातें करनी है, और बातों का फुल फोकस क्या है कि उलमा के नाम से जो है ना उन लोगों की बजन करो, और कुछ करना धरना लेना देना इनको कुछ भी नहीं है ना, एक रत्ती का इन्होंने कोई काम करके नहीं देना है, सिर्फ मौलवी को बुरा बनाने की जो है ना वो सारी की सारी तमाशे करते रहते हैं। अभी भी हो रहा है एक तमाशा इसी किस्म का, जिसमें असल मकसूद उनका सिर्फ ये है कि जो है ना वो लोगों को खराब करो और कुछ नहीं, ठीक है ना। कौन से जाकर के उधर लड़ करके जो वो जहाद करके जो है वो आजाद करवाएंगे, है ना, और कौन सा मुल्क को जो है ना वो इस्लाम के ऊपर लेकर के आएंगे, खुद तो इस्लाम के ऊपर है नहीं, मुल्क को कैसे इस्लाम के ऊपर लेकर के आएंगे, ठीक है ना। लेकिन बस मौलवी क्यों नहीं करता, और मौलवी जिहाद क्यों नहीं करता, और मौलवी जो है वो अपने मदरसे के तालिब इल्मों को जो है ना वो निकाल करके जो है वो धावा क्यों नहीं बोल देता, और ये क्यों नहीं कर देता, और वो क्यों नहीं कर देता, राइट। बस इस किस्म की बातें करके ना इसका कोई लेना देना कुछ नहीं है, बस यही, ठीक है। तो जो गैब के बताने वाले लोग हैं, जो कि ये पूरा का पूरा नबी अलैहिस्सलाम से लेकर के आज के जो उलमाए कराम है, ये पूरा का पूरा ये चेन है, ये एक सिलसिला है, ठीक है। तो इसके बारे में तहकीक करो कि ये कैसे लोग हैं, दूर बैठे हुए मीडिया को देख करके इनके बारे में अपने माइंड माइंड सेट जो है वो मत बना लिया करो। मीडिया तो खुद जो है फासिक और फाजर है, ठीक है, फुसाक और फुजार का जो है वो टोला है, वही तो मीडिया है, ठीक है। तो उसकी बात को सुन करके तुम जो है वो उनके बारे में फैसला कर लेते हो। आगे फरमाते हैं कि कालू फमा जजाउहु इन कुंतुम काज़िबीन, यानी शाही मुलाजमीन ने कहा कि अगर तुम्हारा झूठ झूठ साबित हो जाए तो बतलाओ कि चोर की क्या सजा है। कालू जजाउहु मन वुजिदा फी रहलिही फहुवा जजाउहु कज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन, यानी बरादरान यूसुफ ने कहा कि जिस शख्स के सम्मान में माल मसरूफा बरामद होगा वही वो शख्स खुद ही इसकी जजा है, हम चोरों को इसी तरह सजा दिया करते हैं। मतलब ये है कि शरीयत याकूब अलैहिस्सलाम में चोर की सजा ये है कि जिस शख्स का माल चुराया है वो शख्स उस चोर को अपना गुलाम बना करके रखे, याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत है। सरकारी मुलाजमीन ने यानी उनके ऊपर जो शरीयत अल्लाह ताला ने नाजिल करी थी उसके अंदर ये चोरी की सजा थी। सरकारी मुलाजमीन ने इस तरह खुद बरादरान यूसुफ से चोर की सजा शरीयत याकूबी के मुताबिक मालूम करके उनको इसका पाबंद कर दिया कि बुनियामीन के सामान में माल मसरूका बरामद हो और वो अपने ही फैसले के मुताबिक बुनियामीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करने पर मजबूर हो जाए। वह बदा आप बेअम कबला वही, यानी सरकारी तफ्तीश करने वालों ने असल साजिश पर पर्दा डालने के लिए पहले सब भाइयों के सामान की तलाशी ली, पहले ही बुनियामी का सामान नहीं खोला ताकि उनको शुबा ना हो जाए, ठीक है। तो शुबा किसी के जहन में क्रिएट हो जाए आपके बारे में, तो इससे बचने के लिए तदाबीर इख्तियार करना, ठीक है। तो मुख्तलिफ यानी रेफरेंस मुख्तलिफ कॉन्टेक्स के अंदर जो है वो ये बात आती रही है कि किसी को अपने बारे में शुबा पैदा हो जाने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो एक दफा अजवाज मुतहरात में से किसी के साथ जो है वो रात की तारीकी में गली के अंदर थे, रात के वक्त तारीकी थी कि नहीं थी लेकिन रात के वक्त जो है वो गली में थे, तो दो सहाबा वहां से गुजरे तो नबी अलैहिस्सलाम ने जोर से उनको कहा कि मेरे साथ जो है वो मेरी जौजा है, मेरे साथ मेरी जौजा है, मैं किसी गैर औरत के साथ, नामहरम के साथ या अपनी बीवी के अलावा किसी औरत के साथ नहीं खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो एक तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर खुद भी पर्दे के अहकाम थे, वरना ये कहने की अगर पर्दा नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर था ही नहीं तो फिर किसी गैर औरत के साथ खड़े होते तो किसी को कोई मसला ही कोई नहीं होता और क्लियर क्लियर करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, और दूसरा ये कि किसी के जहन में डाउट क्लियर ना हो, तो सहाबा ने कहा भी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके ऊपर शक करेंगे, आपने फरमाया कि नहीं, ये तो शैतान जो है वो तो इंसान के रगों के अंदर दौड़ता है, यानी लगा होता है वो तो शक पैदा करने के लिए। ठीक है, ताकि वही बात कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जब डाउट क्रिएट हो गया तो उस इंफॉर्मेशन के बारे में भी डाउट क्रिएट हो गया। तो मैं जो वही के बारे में तुम्हें बताता हूं, अगर मेरे बारे में तुम्हारे जहन में शक आ गया तो फिर वो सारी की सारी वही जो है वो मशकूक हो जाएगी तुम्हारे जहन के अंदर, और इससे जो है वो तुम्हारा ईमान खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से शुभों से बचने की तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। फिर इसके ऊपर पिछले रमजान मुबारक में गालबन जो बातें हुई थी वो काफी तफसील के साथ हुई थी कि भाई जब मीडिया के जरिए से शक क्रिएट करने का सामान किया जा रहा हो ना, तो अब उसका जवाब देना आज के दौर के अंदर मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया जो है ना वो इतनी गलीज चीज है कि वो पिछले डाउट से ज्यादा बड़ा डाउट लेकर के आएगा, और उसका आप ताकुब नहीं कर सकते, मीडिया का आप ताकुब नहीं कर सकते। ठीक है, कि वो जो डाउट्स क्रिएट कर रहा है तो आप हर डाउट का जवाब देते जाए, भाई ये तो मीडिया वाले जो लोग हैं, चाहे वो मीडिया स्कॉलर्स हों, चाहे वो मीडिया जो है वो स्पोक्स पर्सन हों या लेडीज हों, या जो है वो टॉक शो के जो है वो रोवैबजा हों जो टॉक शोज के अंदर बैठे हुए जो बक बक करते रहते हैं, आप उनका ताकुब नहीं कर सकते, उनके पीछे पड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो वर्ल्ड है ना मीडिया की वर्ल्ड, वो मीडिया वर्ल्ड जो है इट हैज नो बॉटम, उसका कोई यानी वो नहीं है, तह नहीं है उसकी। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही हल है, मीडिया से जो इल्जाम आते हैं ना उलमाए कराम के ऊपर, इसका सिर्फ एक ही हल है कि या अय्युहल लजीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबयन, ये कुरान मजीद की आयत जो है ना, ये इसके अंदर मीडिया का जवाब मौजूद है। जो कुरान मजीद को मानेगा वो इस आयत का इनकार नहीं कर सकता, जो कुरान मजीद को नहीं मानता हमें वैसे भी उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें वैसे भी उससे कोई लेना देना नहीं है, जब तक अल्लाह ताला उसको ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए, फिर वो मोमिन बनेगा तो फिर कुरान मजीद की इस आयत को मानेगा, राइट, वरना इसके बगैर तो मोमिन कैसे हो सकता है वो। ठीक है, उनके पीछे पड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा जो है ना वो इन लोगों के पीछे पड़ते ही नहीं है, ये है ही फासिक और फाजर, ये तो है ही जो है वो यानी इस्लाम दुश्मन अनासिर की जो है वो एजेंट्स। आगे फरमाते हैं कि यानी सरकारी तफ्तीश करने वालों ने असल साजिश पर हाजिर हो गया, तो मस्तखरा जहां मिन वुआ अखी, यानी आखिर में बुनियामीन का सामान खोला गया तो उसमें से सवाउल मलिक को बरामद कर लिया गया, ये सवाउल मलिक, तो उस वक्त तो सब भाइयों की गर्दनें शर्म से झुक गईं और बुनियामीन को सख्त सुस्त कहने लगे कि तूने हमारा मुंह काला कर दिया। कज़ालिका किदना लियूसुफ मा काना लियाखुज़ अखाहु फी दीन अल मलिक इल्ला अन यशा अल्लाह, यानी इस तरह हमने तदबीर की यूसुफ के लिए, वो अपने भाई को शाह मिस्र के कानून के मातहत गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, क्योंकि मिस्र का कानून चोर के मुताबिक ये था कि चोर को मारपीट की सजा दी जाए और माल मसरूका से दुगनी कीमत वसूल करके उसको छोड़ दिया जाए, मगर उन्होंने यहाँ बरादरान यूसुफ ही से चोर का हुक्म शरीयत याकूबी के मुताबिक दरियाफ्त कर लिया था, उसकी रूह से बुनियामीन को अपने पास रोक लेना सही हो गया। इस तरह अल्लाह ताला की हिकमत व मशीयत से यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये मुराद भी पूरी हो गई। ठीक है, यानी एक तो होती है ना इंसानी तदबीर के वो प्लान करता है कि हाँ भी मैं ऐसे करूंगा तो आगे से बंदा जो है ना वो ऐसे जवाब देगा। ठीक है, जैसे कि चेस का गेम जो कि हलाल नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि चेस जो है ना ये यानी क्या कहते हैं सच क्या नस, ठीक है, ये हदीस मुबारका की नस से जो है ना ये नाजायज है, चेस, चेस का गेम, ठीक है ना, शतरंज जिसको कहते हैं। बाकी गेम्स के बारे में ऐसा नहीं है, जो जो और जो है वो जो बोर्ड गेम्स वगैरह होते हैं, तो उनमें डिपेंड करता है कि आप जुआ रखते हैं कि जुआ नहीं रखते हैं वगैरह, लेकिन चेस शतरंज कह सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, तो शतरंज जो है वो हला हराम है, लेकिन जी ये डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो वो कंप्यूटर बना दिए कि चेस की सारी चालें जो है ना वो पहले से कैलकुलेट करके रख लेता है, फिर उसकी बुनियाद पर जो है अगले बंदे को हराने की कोशिश करता है। खैर, वो सब बेकार की तफसील है। तो इहतमाल होता है कि अगला बंदा क्या चाल चलेगा, लेकिन यहां पर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपनी चाल थी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो मुस्तकबिल का हाल पहले से जानते हैं कि यूसुफ के कारिंदे जो है वो ये बात कहेंगे, तो आगे से जो है ना वो याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं उन्होंने ये जवाब देना है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई शको शुबे की गुंजाइश ही नहीं थी कि वो ये अगर ना जवाब दे दे तो फिर तो इनकी जो तदबीर जाया हो जाती यूसुफ अलैहिस्सलाम की बुनियामीन को रखने की, ठीक है, तो ये तदबीर तो अल्लाह की हुई थी, ये तो जाया हो ही नहीं सकती थी। नरफाउ दरजातिम मन नशाउ वफौका कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, यानी हम जिसके चाहते हैं दरजात बुलंद कर देते हैं, नरफाउ दरजात, जैसा इस वाके में यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरजात उनके भाइयों के मुकाबले में बुलंद कर दिए गए, ठीक है, यानी उनका अपर हैंड हो गया यूसुफ अलैहिस्सलाम का, ना, और भाई जो है ना वो यानी शर्मिंदा हो गए, मजबूर हो गए, बेबस हो गए, ठीक है। हालांकि पहले क्या मामला था, यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे बेबस थे, ठीक है, और भाई जो थे ना वो कैसे जो है वो जबरदस्त थे, अब उल्टा मामला कर दिया अल्लाह ताला, है ना, तो अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, ठीक है, मतलब हम इतना परेशान होते हैं कैसे होगा क्यों होगा, सीधी सी बात है भाई, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया का पूरा निजाम चला रहा है, बल्कि दुनिया से आगे बढ़कर के कायनात का पूरा निजाम चला रहा है, तो एक तुम्हारे ही एक निजाम रह गया था जो कि बेचारा नाउज 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 बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला, है ना, जो कि अल्लाह ताला नहीं चला सकता सही, है ना, वो तो तुमने खुद चलाना है, बाकी कायनात तो अल्लाह ताला चला सकता है, तुम्हारा निजाम नहीं चला सकता सही, ठीक है ना, तो इस वजह से जो है ना वो हम बाय हुक और बाय क्रुक जो है ना वो अपने निजाम चलाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ करके, अल्लाह के ऊपर से जो है ना वो एतमाद को खत्म करके जो है ना वो हम खुद से अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए नाजायज जो अल्लाह ताला ने जिनको हराम करार दिया, जिन तरीकों को अल्लाह ताला ने जिन तरीकों को नाजायज करार दिया, उन तरीकों को फिर हम यूज करना शुरू कर देते हैं ताकि किसी तरीके से जो है ना वो हमारा मसला हल हो जाए, ठीक है ना, तो भाई ये तरीका नहीं है, जो नबी अलैहिस्सलाम ने तरीका सिखाया वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जायज असबाब करार दिए हैं वो असबाब तुम इख्तियार करो, क्योंकि वो अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम असबाब इख्तियार करो, ठीक है ना, अकल के मुताबिक तो ये होना चाहिए था कि असबाब इख्तियार करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस अल्लाह ताला ने करना है जो भी करना है, तो बस असबाब कहाँ से बीच में आ गए, अकल तो ये कहती है इंसान की, ठीक है ना, तो फिर क्यों असबाब इख्तियार करते हैं, फिर क्यों तदबीरें करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, अल्लाह ताला ने हमें सिखाया कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम असबाब इख्तियार करो इस वजह से, लेकिन अल्लाह ताला ये कोई थोड़ी चाहते हैं कि तुम नाजायज असबाब इख्तियार करना शुरू करो, ठीक है ना, करना तो अल्लाह ताला ने ही है, हमने तो सिर्फ अल्लाह ताला के बताए हुए हुक्मों को पूरा करना है और नतज और मामला अल्लाह के हवाले करना, ठीक है, तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल काम है, किसी चढ़ती चढ़ते को जो है वो गिरा देना और गिरते को जो है वो चढ़ा देना, क्या मुश्किल काम है। जैसे इस वाकये में यूसुफ अलैहिस्सलाम की दर्जात उनके भाइयों के मुकाबले में बुलंद कर दिए गए। ये तो एक बंदे को नीचे किया, एक बंदे को ऊपर किया और बाकियों को जो नीचे किया। लगातार तो कौमों को तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैन अन्नास, पूरी पूरी इंसानों की जमातों को जो है ना वो अल्लाह ताला इस तरीके से नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और हर इल्म वाले के ऊपर उससे ज्यादा इल्म वाला मौजूद है। वो फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, मतलब ये है कि मखलूक में हमने इल्म के एतबार से बास को बास पर फोकियत दी है, बड़े से बड़े आलम के मुकाबले में कोई उससे ज्यादा इल्म रखने वाला होता है। और अगर कोई शख्स ऐसा है कि पूरी मखलूकात में कोई इससे ज्यादा इल्म रखने वाला नहीं है, तो फिर रब्बुल इज्जत जल्ला शानहू का इल्म तो सबसे बालातर ही है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम, पूरी कायनात में नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा इल्म रखने वाला कोई भी नहीं, ठीक है ना। तो ये तो हम अपने ईमान की बुनियाद पर ये बात कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के इल्म से भी ज्यादा है, ठीक है। अहकाम व मसाइल, आयात मस्कूरा से चंद अहकाम व मसाइल हासिल हुए हैं। अव्वल के आयत वलिमन जा अभी हिम्लु बईरिन से ये बात साबित हुई कि किसी मुअय्यन काम के करने पर कोई उजरत या इनाम मुकर्रर करके ऐलान आम कर देना कि जो शख्स ये काम करेगा उसको इस कदर इनाम या उजरत मिलेगी, ठीक है। यानी जैसे इश्तिहारी मुजरिमों के गिरफ्तार करने पर या गुमशुदा चीजों की वापसी पर, इस तरह के इनामी ऐलानात का आमतौर पर रिवाज है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो जायज है, इस तरीके से ऐलान आम कर देना, क्योंकि इसमें एक डाउट पैदा हो सकता था ना कि जी आपने जो है वो एक गोया के एक क्या कहते हैं एक तिजारत कर ली, और तिजारत के अंदर अभी कोई डिटरमिनेंट ही नहीं है कि आप जो है ये जो माल देंगे तो ये किसको देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह सा एक जो है इसके अंदर गरर पैदा हो गया भाई, एक अनक्लेरिटी पैदा हो गई, तो और गरज जो है ना वो उस तरह का जो है वो बाय आप कर ही नहीं सकते, उस तरह का एग्रीमेंट आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस है जिसके अंदर के आपको नहीं पता कि आपने वो माल किसको पे करना है, कौन लेकर के आएगा फलानी गुमशुदा चीज को, लेकिन फिर भी आप ऐसा ऐलान कर सकते हैं। अगरचे इस सूरत मामले पर फिकी इजारे की तारीफ सादिक नहीं आती, मगर इस आयत की रूप से इसका भी जवाज साबित हो गया, ठीक है। तो फिकी इजारा एक अलग चीज होती है, यानी जो आप रेंटल एग्रीमेंट वगैरह किसी के साथ करते हैं ना, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग सिचुएशन है जिसके लिए इस आयत से जवाज साबित हो जाता है। दूसरे, अना भी जमीन से मालूम हुआ कि कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की तरफ से हक्के माली का जामिन बन सकता है, गारंटियर, जामिन जमानत देने वाला, किसी दूसरे के बिहाफ के ऊपर आप गारंटियर बन सकते हैं। और इस सूरत का हुक्म जमहूर फुकाहे उम्मत के नजदीक ये है, यानी फुकाहे उम्मत की मेजोरिटी, अवामुन नास की मेजोरिटी नहीं, ये जो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है ना। एक बात और भी याद रखें उलमा के बारे में, ताकि हमारे दिलों में जो है ना वो जो डाउट्स पैदा होते हैं ना कि ये कैसी बात कर रहे हैं, ये वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को जो है ना वो कैसे जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि ये तो इस्लामी डेमोक्रेसी नहीं है और ये फलानी नहीं है ढिमकानी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए भी जो है ना वो बात क्लियर रखा करें जहन के अंदर कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे अकाबिर उलमाए का नाम है ना, एक तो उनका इल्म जो है ना वो इतना वसी है कि वो हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि ये वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है ना ये सही नहीं है, जिसके अंदर घोड़ा गधा बराबर, जिसके अंदर जो है ना वो एक चमार जिसको मोची कहते हैं, राइट, या जो यानी सड़क साफ करने वाला जो जो आदमी है जिसका कोई इल्म नहीं है, जिसकी कोई जो है वो टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं, किसी जो उसको सियासत का भी पता नहीं, दीन का भी पता नहीं, किसी भी चीज का भी पता नहीं, अब वो कोई भी हो सकता है। मेरा मतलब ये नहीं है कि ये प्रोफेशंस कोई गंदे प्रोफेशंस हैं, कहने का मकसद ये कि उम्मीद तौर पर ऐसे प्रोफेशन जो होते हैं जो जूता का घाटने वाले लोग होते हैं या जो है वो नाली साफ करने वाले लोग होते हैं, उनके पास इल्म नहीं होता, जब भी तो ये वाले काम कर रहे होते हैं, उसका भी वोट उतना ही वेट रखता है कि जितना जो है ना वो एक मुफ्ती, शेखुल हदीस या शेख तरीकत, शेख कामिल जो भी हो, पीर जुल्फकार अहमद नकबंदी, हमारे शेख को कितने वोट मिलते हैं, 10 वोट मिलते हैं कि जी आप हजरत जी हैं, आपके इतने सारे मुरीद हैं, आप इतने जो है वो मशहूर मुत्तकी परहेजगार हैं और ये हैं वो हैं, तो आपको जो हम जो है ना 50 वोट के बराबर वोट देते हैं, क्या ख्याल है? ये वाली डेमोक्रेसी जो है वो हम किसी भी हजरत को, किसी भी आलिम को, मुफ्ती तकी उस्मानी जी, आप मुफ्ती, आप तो शेखुल इस्लाम है भाई, आपको तो हम जो है ना वो 50 वोट देते हैं, 50 वोट के बराबर आपका वोट होगा, क्या ख्याल है? ऐसा होता है? ऐसा हो सकता है कभी भी? तो वो जो जिसको के एक लफ्ज का भी कुछ पता नहीं, पढ़ना पढ़ना लिखना भी जिसको नहीं आता, उसका भी एक वोट है, मुफ्ती तकी उस्मानी का भी एक वोट है, ठीक है ना? तो ये मुझे पता है, आपको पता है ये बात, ये जो अकाबर उलमाए कराम है उनको ये बात नहीं समझ आती, तो फिर वो इस डेमोक्रेसी को क्यों सपोर्ट कर रहे होते हैं? ठीक है, तो भाई वो ऐसे सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, वो इस वजह से सपोर्ट कर रहे होते हैं क्योंकि इस वक्त जो है ना वो फसाद से बचने का सिर्फ एक यही तरीका है, फसाद से बचने का। कौन से वाले फसाद की बात कर रहा हूँ? वो फसाद नहीं जो कि ऑलरेडी है, उस फसाद की बात नहीं कर रहा, बल्कि लीबिया वाले फसाद। लीबिया की जरा तारीख उठा के पढ़ लें, 2011 में वहां पे क्या हुआ है और उसके बाद लीबिया का क्या हाल है, इराक जैसा फसाद, सीरिया जैसा फसाद, ठीक है ना? और उसके अलावा बहुत सारे दूसरे मुल्कों के जैसा जो फसाद है, उस फसाद से बचने का इस वक्त यही तरीका है कि बस यही यही डेमोक्रेसी, क्योंकि अवाम इस्लाम नहीं चाहते। सच्ची बात यह कि अवाम उन्नास, मैं और आप इस्लाम नहीं चाहते हैं, ठीक है ना? तो इस वजह से ना ये डेमोक्रेसी जो है वो इस वक्त मजबूरी है, ठीक है? और दूसरी चीज ये है कि इस डेमोक्रेसी के अंदर ही रह करके इसी को जो है ना वो यूज करके कि भाई ये तुम्हारा निजाम है ना, तुम इसको कहते हो ना कि हाँ ये सही निजाम है, चलो इसी को फॉलो कर लो, इसी को फॉलो कर लो, कि जो जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, तो मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो जो मुत्तफिक होकर के कोई फैसला कर रहे हैं, तो भाई उसको तो अपहोल्ड करो ना। सारे मुंतखब नुमाइंदों ने मिलकर के जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पास किया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा हुआ है कि कोई कानून जो है वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं हो सकता, तो तुम जिस डेमोक्रेसी को सही समझते हो तुम उसी डेमोक्रेसी को फॉलो कर लो ना, ठीक है ना? इसी वजह से वो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करते रहते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा निजाम है। जैसे कि पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी ने मिसाली मर्द और मिसाली औरत के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च, कि तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मानते हो ना, तो चलो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ही को मान लो, मौलवी की बात ना मानो, मेरी बात ना मानो, ऑक्सफोर्ड की बात मान लो ना, राइट? हार्वर्ड की ही बात मान लो ना, क्योंकि ये तुम्हारे बड़े हैं ना, तो उनकी बात मान लो। यही वाला उसूल है डेमोक्रेसी के साथ भी। और दूसरी बात यह कि वो ये बात भी बड़े मजे से माशाल्लाह कहते रहते हैं ना, अवामी नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे, ठीक है ना? तो अवामी नुमाइंदे के बारे में तो उनके दरमियान बैठ करके, उनके दरमियान खड़े होकर के कहते हैं ना कि अवामी नुमाइंदे जो हैं वो इस्लाम के बारे में बिल्कुल भी संजीदा नहीं है, ठीक है? इस्लाम के बारे में बिल्कुल भी संजीदा नहीं है अवामी नुमाइंदे। अब मुझे जरा ये बताएं कि अवामी नुमाइंदे का लफ्ज जो वो ये कहते हैं कि वो इस्लाम के बारे में संजीदा नहीं है, तो इसके अंदर क्या हिकमत है, जरा ये मुझे बता दें, फिर आपकी जान छोड़ देंगे बाकी अगली क्लास में इंशाल्लाह। ये जो बात कहते हैं कि अवामी नुमाइंदे इस्लाम के बारे में संजीदा नहीं है, इस जुमले का मतलब क्या है जी? MNA MPA इस्लाम के बारे में संजीदा नहीं है, ये इसका मतलब है? ट्रांसलेशन मुझे नहीं चाहिए, मैं आपसे इसका मतलब पूछ रहा हूं कि अवामी नुमाइंदे इस्लाम के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है जी। नुमाइंदा किसको कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव, अंग्रेजी तो ज्यादा समझ में आती है ना हमारे, रिप्रेजेंटेटिव। तो भाई जो जिसको रिप्रेजेंट करता है वो उसी के माइंडसेट का ही होता है ना, वो उसी के माइंडसेट का ही होता है ना, जबी तो उसको नुमाइंदा कहते हैं, जबी तो उसको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो एक जुमले के अंदर जो है ना वो अवामुन्नास की बाकी हकीकत बयान कर देते हैं, लेकिन वो ऐसा जुमला होता है कि माशाल्लाह अवाम के सर पे से गुजर जाता है, ठीक है ना? कि भाई हाँ, ये अवाम की बुराई को थोड़ी कह रहे हैं, ये तो सियासतदानों की बुराई कर रहे हैं, ये तो ऐवान में बैठे हुए लोगों की बुराई करना है। नहीं, वो ये उनकी बुराई नहीं कर रहे, वो अवाम की बुराई कर रहे हैं, वो अवाम की हकीकत बयान कर रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारे ही नुमाइंदे हैं, ठीक है? अवाम फिर भी इन नुमाइंदों को बुरा भला कहती है, ये तो भाई यही तो इसको कहते हैं मवेशी। जैसे कि मवेशी जो होते हैं ना, उनकी अकल जो होती है ना वो काम नहीं कर रही होती, क्या कर रही होते हैं मवेशी? अल अवाम कल अनआम, मवेशी का काम क्या होता है, घास चरना, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो आवाम होती है ना, जो कल अनआम होती है, तो उसकी भी अकल जो होती है ना, वो घास चरने के लिए गई हुई होती है। तो जिसकी अकल घास चरने के लिए गई हुई होती है, तो वो जो है ना, जिनको नुमाइंदा अपना बनाती है, जिनके लिए नारे लगाती है, जिनको जो है वो अपना वोट देती है, तो वो उनको बुरा भला भी कहना शुरू कर देती है। एक वक्त जो है वो अच्छा अच्छा कहना शुरू हो जाती है, फिर उनको बुरा भला कहना शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद दोबारा से अच्छा कहना शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद दोबारा से बुरा भला कहना शुरू हो जाती है। तो क्योंकि घास चरण अरबी के मकूले जो होते हैं ना, वो उनके अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की गहराई होती है। अलावाम कल अनाम, अनाम का काम क्या है, घास चरण, ठीक है। तो घास चरने से तो हम उसी वक्त ही आजाद हो सकते हैं जबकि हम मवेशियों जैसी हरकतें करना छोड़ दें और अल्लाह के हुक्मों, अपने परवरदिगार के हुक्मों के ऊपर चलने की कोशिशें शुरू कर दें, ठीक है जी। तो जामिन और फुकाहा, जमहूर, जमहूर से बात शुरू हुई थी कि जमहूर फुकाहा उम्मत, यानी मेजोरिटी फुकाहा उम्मत की, घोड़े गधों की मेजोरिटी नहीं, या मवेशियों की मेजोरिटी नहीं, फुकाहा की मेजोरिटी, ठीक है, समझ रखने वालों की मेजोरिटी। तो उनके नजदीक यह है कि साहिब हक को इख्तियार होता है कि वो अपना माल असल मदयून से या जामिन से, जिससे भी चाहे वसूल कर सकता है। मदयून वो जिसको के कर्ज दिया हुआ है, जिसने असल में कर्ज दिया है, उसको मदयून कहते हैं। और जामिन वो है जिसने मदयून के बिहाफ के ऊपर जो है वो कोई गारंटी ली हुई है कि अच्छा वो नहीं दे सकेगा तो मैं अदा करूंगा उसकी तरफ से, उसको जामिन कहते हैं। तो कर्ज देने वाला जो है ना, वो अगर मदयून से कर्ज वापस ना मिल रहा हो, तो वो जामिन से जो है वो कर्ज अपना वापस ले सकता है। हाँ, अगर जामिन से वसूल किया गया तो जामिन को फिर यह हक हासिल होगा कि जिस कदर माल उससे लिया गया है, वो असल मदयून से वसूल कर ले, ठीक है। तो ये खैर, ये आपके किताबुल बुयू के मसाइल हैं जो पढ़ चुके हैं, उनको ज्यादा समझ में आते हैं, जो नहीं पढ़े पढ़े हुए हैं वो उर्दू में भी इनको बहश्ती देवर, या आजकल जो तसहील बहश्ती देवर किताब मौजूद है, उसके अंदर भी बहुत अच्छे से उर्दू के अंदर भी ये मसाइल लिखे हुए हैं। बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। वह आखिर दावा अलहमदुलिल्लाह, सलाम।